वंश जिंदल नायरा के साथ मिलकर झूठ बोल रहा था। पहले उन्होंने वसुधा के घर पर कब्जा कर लिया था, फिर उनके कीमती सामान चुरा लिया था। अब तो नायरा ने हद कर दी थी, वो शेयर्स देख के डिमांड करने लगी थी। ऊपर से पहले उन्होंने डॉक्टर अनामिका का नाम लगाया। पिछले कुछ दिनों से जो भी हो रहा था वो ईशिता के बस के बाहर जा चुका था, और अब उसने वंश और नायरा का सच सबके सामने लाने का तय कर लिया था। इसके लिए उसने इंस्टीट्यूट के डीन रेहान स्मिथ को बुलाया। रेहान अकेला नहीं आया था, वो अपने साथ पुलिस लेकर आया था। जैसे ही ये नायरा और वंश ने सुना, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वंश ने गुस्से में ईशिका की तरफ देखकर कहा, ये सब तुमने किया है ना, तुम रेहान स्मिथ को जानती थी और तुमने ही पुलिस कंप्लेन करवाई है। अभिमन्यु ने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिना किसी सबूत के तुम मेरी वाइफ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, गलती यहाँ तुम्हारी है, तुमने चोरी की थी। वंश ने तेज आवाज में कहा, ये सब इसने ही किया है, मिस्टर स्मिथ यहाँ गोवा आए हुए हैं जबकि दवाइयाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में रखी हुई हैं, उन्हें यहाँ बैठे सपना तो आया नहीं होगा कि दवाइयाँ चोरी हो गई हैं, किसी ने उन्हें बताकर मुझे पकड़वाने की कोशिश की है। पुलिस में पकड़े जाने के डर से वंश बुरी तरह बौखला गया था। उसने गहरी सांस ली और ईशिका की तरफ देखकर कहा, ये सब मैंने तुम्हारी दादी के लिए ही किया था, फिर भी तुमने पुलिस कंप्लेन की ताकि तुम्हें शेयर्स नहीं देने पड़े, कितनी लालची हो तुम। नायरा ने उसका साथ देते हुए कहा, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब उन्हें पता चल गया तो वे आगे से हमें दवाइयाँ लाने नहीं देंगे, कम से कम दादी के बारे में तो सोच लेते, ऐसा करके आप उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँचा रहे हो। प्रशांत को भी इन सब से काफ़ी गुस्सा आ गया था, वो बोला, यहाँ दूसरे लोग मेरी माँ के लिए चोरी तक करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये इंसान शेयर्स देने और अपनी पोजीशन छीन लेने के नाम से इतना घबरा गया कि मेरी माँ की ज़िंदगी के साथ खेलने के लिए भी तैयार हो गया। तुम एक घटिया इंसान हो अभिमन्यु। नकुल को अभिमन्यु से ज़्यादा गुस्सा ईशिका पर था। उसने कहा, मुझे लगता है कि अभिमन्यु इस बारे में कुछ नहीं जानता, ये सब उसकी पत्नी की साजिश है। ये सच था कि कंप्लेंट ईशिका ने ही की थी, वो भी अभिमन्यु को बिना बताए। उसे दूसरों को एक्सप्लेनेशन देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि अभिमन्यु उसे गलत समझे। अभिमन्यु ने एक नज़र ईशिका की तरफ देखा, वो कुछ सफाई देती उससे पहले अभिमन्यु ने कहा, ये हम दोनों ने मिलकर किया है। ईशिका एक पल के लिए चौंक गई थी, अभिमन्यु उस पर इतना यकीन करता था कि उसने कुछ नहीं पूछा और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। ईशिका के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल दिग्विजय गुस्से में खड़े होकर बोले, एक लड़की के प्यार में तुम इस कदर पागल हो गए कि अपनी दादी की जान की भी परवाह नहीं की। ईशिका दिग्विजय की तरफ पलटी और बोली, दादाजी एक बार आप मिस्टर स्मिथ को अंदर आने दीजिए, आई प्रॉमिस सारा सच सबके सामने आ जाएगा। कौन सा सच सामने आ जाएगा, तुम्हें दिख नहीं रहा है, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और उसके बाद हमें दवाइयाँ नहीं मिलेगी, दिग्विजय ने गुस्से में जवाब दिया। वे सब लोग हड़बड़ा गए थे, क्योंकि वंश का पकड़ा जाने का सीधा मतलब था कि जो भी दवाइयाँ वहाँ लाई गई थीं वे सब वापस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने वाली थीं। उन सब की बहस के बीच हाउस हेल्पर पुलिस और रेहान स्मिथ के साथ अंदर पहुंचा। रेहान ने वंश की तरफ देखकर गुस्से में कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था वंश जिंदल, सोचा था कि अब तक तुम ईमानदार रहे हो तो आगे भी ईमानदार रहोगे, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। कल ईशिका ने जब रेहान को इस बारे में बताया था तो उसे लगा कि ये गलतफहमी है, इसलिए वो तुरंत दिल्ली चले गए थे। वहां जाकर उन्होंने चेक किया तो वाकई वहां दवाइयां मिसिंग थी। उसके बाद रेहान तुरंत वापस गोवा आया और वंश के खिलाफ कार्रवाई की। वंश ने अपनी सफाई में कहा, सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैंने ये किसी की जान बचाने के लिए किया था। उसकी बात को अनसुना करते हुए रेहान ने कड़क लहजे में कहा, मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सबूत है, ऑफिसर इसे अरेस्ट कर लीजिए। रेहान किसी भी मामले में अपनी रेपुटेशन ईशिका के सामने डाउन नहीं करना चाहता था। उसने ईशिका को सुनाने के लिए कहा, जितनी दवाइयाँ हमारे यहाँ से गायब हुई हैं पुलिस ने हमें एक एस्टिमेट अमाउंट लगाने को कहा है, दवाइयों के पैसे अभी तय नहीं किए गए हैं। ईशिका ने उसकी बात को समझते हुए कहा, मिस्टर जिंदल ने इन दवाइयों के बदले 3% शेयर्स डिमांड किए थे, राजवंश एम्पायर के 3% शेयर्स की वैल्यू कितने मिलियन डॉलर है ये पता लगाने के बाद शायद हम मिस्टर जिंदल की सज़ा के बारे में सोच सकें। ईशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा तो वो तुरंत बोला, हमारे 3% शेयर्स की वैल्यू? अगर अभिमन्यु पूरी वैल्यू बता देता तो धोखाधड़ी के केस में शायद ही कभी फिर वंश जिंदल बाहर निकल पाता। अभिमन्यु की बात पूरी होने से पहले ही वंश बीच में चिल्लाते हुए बोला, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए थे, ये सब नायरा राजवंश का प्लान था, मैं तो बस अपनी फैमिली की नज़रों में ऊपर उठना चाहता था इसलिए इसका साथ दिया, आप चाहो तो मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो। खुद को फंसते देखकर वंश ने नायरा का नाम आगे कर दिया था। नायरा का नाम आते ही उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। रेहान ने पुलिस से कहा, मैं आपको एक एस्टिमेट अमाउंट बता दूंगा। पुलिस ऑफिसर ने उसकी बात पर अमल किया और वंश जिंदल को अरेस्ट करके ले गए थे। वंश को भले ही कितनी भी सजा क्यों ना हो लेकिन अब उसका करियर बर्बाद हो चुका था। बाहर आने के बाद कोई भी उसे रिसर्चर के तौर पर अपने यहाँ काम नहीं देने वाला था। उनके जाने के बाद अब बस राजवंश फैमिली ही वहाँ पर बची थी, रेहान भी अभी तक वहीं पर था। वसुधा ने गुस्से में नायरा की तरफ देखकर कहा, तुम सब लोग बेवजह मेरे बच्चे पर इल्जाम लगा रहे थे। मेरी बहू और मेरा अभिमन्यु कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। ये पूरी साजिश इस लड़की की थी जिसने पैसों के लिए ये सब किया। नायरा का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। नकुल ने उसका साथ देते हुए कहा, ये नायरा ही थी जो दवाई लेकर आई थी। भले ही तरीका गलत ही क्यों ना रहा हो, सच्चाई सबके सामने आ गई हो, लेकिन दवाई अब हमारे हाथ में नहीं है। इस सच का क्या करेंगे जब दादी ही नहीं होगी। दवाइयां चले जाने की वजह से प्रशांत भी गुस्से में था। वो बोला, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। इसे बस खुद का नाम ऊपर करना था, बस इसलिए मेरी माँ की जान दांव पर लगा दी। क्या हो जाता अगर इसे 3% शेयर दे देते। कम से कम आज मेरी माँ के पास दवाइयां होती। हर कोई अभिमन्यु और ईशिका को दोष दे रहा था। ईशिका ने गहरी सांस ली और कहा, आप चिंता मत कीजिए, दादी के लिए दवाइयों का अरेंजमेंट हो जाएगा। ईशिका के कहते ही सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। दिग्विजय ने पूछा, क्या दवाइयां खरीदी जा सकती हैं? वे तुम्हारे पास कैसे आईं? नहीं, अभी दवाइयां मार्केट में नहीं आई हैं, ईशिका ने जवाब दिया। नकुल ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम इतने बड़े बड़े दावे क्यों कर रही हो? अगर दवाइयां मार्केट में नहीं आई हैं तो फिर वे हमारे तक कैसे पहुंचेंगी? ईशिका ने इस मामले को लेकर कोई भी बहाना नहीं सोचा था। उसने रेहान की तरफ देखा जो उसे इस सिचुएशन से बचा सकता था। रेहान ने कहा, आप सब मिसेज राजवंश की हेल्थ को लेकर परेशान मत होइए। मिस सिंघानिया से मेरी पहले ही बात हो चुकी है। ये पिछले कई दिनों से कॉल कर रही थी ताकि मिसेज राजवंश के लिए स्लॉट प्रोवाइड करवा सके। उन्होंने बताया कि वे अपनी दादी से बहुत प्यार करती हैं और वो अल्जाइमर की आखिरी स्टेज पर है। हॉस्पिटल में भी आने की हालत में नहीं है। तब मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं उनके लिए दवाइयाँ घर तक पहुँचाऊंगा।
रेहान स्मिथ ईशिका की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। ये देखकर वो हल्का सा खांसी ताकि रेहान चुप हो जाए। उसने खुद को काबू करके कहा, मैं अभी भी अपने साथ में दवाइयां लेकर आया हूं। अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए इन्हें ले जाने की ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए मैं बेड प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आपको जब भी दवाइयों की ज़रूरत पड़े आप कॉल कर दीजिएगा। हमें खुशी होगी अगर हमारी दवाइयों से मिसेज राजवंश ठीक हो जाएंगी। ईशिका ने दवाइयाँ प्रोवाइड करवा दी थीं। ये सुनकर दिग्विजय ने खुश होकर कहा, बेटा पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो तुम्हें बेवजह हौलत समझ रहा था और न जाने तुम्हें क्या क्या नहीं सुना दिया। ईशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। रेहान ने बिल्कुल परफेक्ट बहाना बनाया था क्योंकि ईशिका ने इस मामले में कुछ नहीं सोचा था। दिग्विजय के दिल से ईशिका के लिए गलत फहमियां दूर हो गई थीं। ये देखकर वसुधा को भी अच्छा लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मेरी बहू मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि अभिमन्यु ने अपने लिए एक अच्छी लड़की का चुनाव किया है। दोनों हमेशा साथ में खुश रहना, दिग्विजय ने मुस्कुराकर कहा। प्रशांत और नकुल को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। वे वहां से खिसकना चाहते थे लेकिन तभी अभिमन्यु ने कहा, डैड भैया आपने ईशिका को काफी कुछ सुनाया है जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। आप अभी ईशिका से माफी मांगेंगे। प्रशांत चुप हो गया। वो ईशिका से माफी नहीं मांगना चाहता था। कुछ ऐसा ही हाल नकुल का था। उसने सफाई देते हुए कहा, अभिमन्यु तुम्हारी पत्नी ने दवाइयां पहले ही प्रोवाइड करवा रखी थी तो उसे बताना चाहिए था ना, इस तरह छुपाकर रखने का क्या फायदा हुआ। नकुल का साथ देते हुए प्रशांत ने कहा, नकुल बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम हम सबको बता देती तो ये सब गलतफहमी होती ही नहीं, लेकिन तुम्हें हम सबको परेशान करना अच्छा लगता है। ईशिका उन्हें कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। वो इसे ज़रूरी भी नहीं समझती थी लेकिन अभिमन्यु किसी भी मामले में ईशिका की इमेज खराब नहीं होने देना चाहता था। वो बोला, अगर ईशिका पहले ही सबको बता देती तो शायद हमें नायरा के इंटेंशन के बारे में पता नहीं चलता। नायरा तुमने दादी के लिए दवाइयाँ लाने का नाटक किया जबकि तुम्हारा असल मकसद शेयर्स को हासिल करना था। ईशिका ने प्रशांत की बातों को दोहराते हुए कहा, नायरा तुम्हें शेयर चाहिए थे तो सीधे सीधे बोल देती ना, इस तरह ये सब तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी। लगता है तुम्हें पूरे परिवार को परेशान करना अच्छा लगता है। नायरा ने मासूम सा चेहरा बनाया और फिर रोते हुए कहा, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि जिंदल फैमिली बहुत हाई क्लास है। मेरा तो कोई नहीं है जो मेरे लिए एक अच्छी शादी अरेंज कर सके। खैर छोड़िए, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। मुझे खुद को ही शर्मिंदगी महसूस होगी लेकिन एक बात साफ है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि दादी ठीक हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि अब जिंदल फैमिली में मेरी शादी होगी क्योंकि मेरी वजह से उनके घर का बेटा पकड़ा गया। नायरा के पास कहने को कुछ नहीं था इसलिए वो रोती हुई चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। प्रशांत ने तुरंत नकुल से कहा, जाकर अपनी बेटी से बात करो और उसे कहो कि हम उसकी शादी अच्छे से अरेंज करवाएंगे। इस तरह जिंदल फैमिली से रिश्ता तोड़ने से कुछ नहीं होगा। इतनी मुश्किल से हमारा किसी बड़ी बिजनेस फैमिली के साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है, उसे इतनी आसानी से हम जाने नहीं देंगे। नकुल तुरंत नायरा के पीछे गया। नायरा ने नकुल से कहा, मेरा प्लान बुरी तरह फ्लॉप हो गया, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेन विला शिफ्ट हो जाओ और मेरे रहते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, नकुल ने जवाब दिया। नायरा ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ हो। वो अपने दो सूटकेस को घसीटती हुई वहां से लिविंग एरिया में आई। नायरा आगे बढ़ती उससे पहले अभिमन्यु ने पीछे से कहा, रुक जाओ नायरा, अभी कुछ बाकी है। नायरा के कदम वहीं पर रुक गए थे। ईशिका और अभिमन्यु वहां पर आए। नायरा ने उन दोनों की तरफ देखकर मासूम बनते हुए कहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, इतना काफी होगा? या अब आप लोगों से माफी मांगने के लिए मुझे इस घर के रिचुअल के हिसाब से आपके सामने घुटनों के बल बैठना पड़ेगा? इसकी जरूरत नहीं है, इशिका ने जवाब दिया। नायरा ने गहरी सांस ली और वहां से जाने को हुई कि इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया था। नायरा उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी, तभी इशिका ने सख्ती से कहा, तुम यहां से कहीं भी जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाने से पहले दादी का सामान यहीं पर रखकर जाओ। नायरा को इशिका की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने सामान्य अंदाज में कहा, आंटी आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे नहीं पता, इस सूटकेस में वीरा सामान है, इसमें दादी का कुछ नहीं है। ठीक है, फिर मैं पुलिस को कंप्लेंट कर देती हूँ, जिससे पता चल जाएगा, खुद ही निकाल दो तो ज्यादा सही रहेगा। मैंने देखा था दादी के कीमती कंगन गायब हैं, जो वे अपने पीहर से खानदानी कंगन के तौर पर लेकर आई थीं। सुना है उनकी कीमत करोड़ों में है, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। पुलिस के नाम से ही नायरा के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हाँ, उनके बारे में मैं भूल ही गई थी, वे मेरे सूटकेस में ही बंद हो गए थे, मैं अभी आपको उन्हें दे देती हूँ। इतना कहकर नायरा नीचे बैठी और सूटकेस को थोड़ा सा ही खोला ताकि कंगन को निकाल सके। वो नहीं चाहती थी कि पूरा सूटकेस खुलने पर उसकी सच्चाई सामने आए कि उसने कितना कुछ सामान वहां से उठाया था। लेकिन इशिका सब सच जानती थी और वो इतनी आसानी से नायरा को सामान लेकर वहां से जाने नहीं देने वाली थी।